हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आज शिवांशा और वेद की रिसेप्शन पार्टी थी। शिवांशा इस वक्त वेद के फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में मेकअप आर्टिस्ट की टीम से घिरी हुई बैठी थी। उसका दिल बहुत बेचैन था, क्योंकि अंकुश ने आज उसे वेद को पॉइजन देने के लिए कहा था। शिवांशा को हर हाल में अंकुश का काम करना ही था, इस वजह से वो काफी घबराई हुई थी। अच्छी तरह तैयार होने के बाद भी शिवांशा के चेहरे पर वो ग्लो नहीं था। मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम अच्छे से किया और फिर वो वहां से चली गईं। शिवांशा ने उनके जाते ही जहर की बोतल को फिर से संभालकर अपने पास रख लिया था। गलत कामों के लिए कभी भगवान की हेल्प नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा भगवान जी। भगवान जी, मुझे अपने भाई के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं उन्हें एक खरोच भी नहीं आने देती। मैं मजबूर हूँ, इसलिए अब मुझे उनकी जान लेनी पड़ रही है, शिवांशा ने सिसकते हुए मन ही मन कहा। वहीं वेद भी तैयार हो चुका था। बाकी की फैमिली वेन्यू के लिए निकल चुकी थी। वेद को शिवांशा के साथ जाना था, इसलिए वो कमरे के अंदर आया। उसने देखा कि शिवांशा ने डार्क मैरून कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था। उसे रॉयल लुक देने को कहा गया था। पिछली बार जब वो अपनी शादी में तैयार हुई थी, तब गीतिका ने उसके लिए ज्यादा हैवी लहंगा सिलेक्ट नहीं किया था। उसे रियल ज्वेलरी देने के बजाय इमिटेटेड ज्वेलरी दी गई थी। इस बार सब कुछ अलग था। उसे सबके सामने चौहान खानदान की बहू के तौर पर आना था। उसका लहंगा डिजाइनर और काफी हैवी था, जिसमें रियल गोल्ड और सिल्वर के वर्क से एम्ब्रॉयडरी किया गया था। फुल रियल ज्वेलरी के साथ वो बिल्कुल एक महारानी की तरह लग रही थी। इतनी सारी ज्वेलरी के बीच भी शिवांशा ने वेद का दिया हुआ चैन पहना हुआ था। हालांकि वो ज्वेलरी के साथ मैच नहीं कर रहा था, फिर भी शिवांशा ने उसे नहीं उतारा था। वेद ने ऑफ व्हाइट कलर की इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ शिवांशा से मैच करता हुआ डार्क मैरून कलर का ब्रोच लगा रखा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा। अनजाने में ही शिवांशा की नज़रें नीचे झुक गई थीं। अच्छा हुआ तुम तैयार हो गईं, वैसे भी हम काफी लेट हैं, जल्दी आओ, वेद ने जल्दबाजी में कहा। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि वो थोड़ा लड़खड़ा गई और वेद ने उसे संभाला। इतने लोगों के सामने इस तरह लड़खड़ाती हुई चलोगी तुम? और ये ड्रेस किसने दी है तुम्हें? तुमसे ज्यादा हैवी तो मुझे ये लग रहा है। चेंज कर लो, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे संभाल पाओगी, वेद ने चिढ़ते हुए कहा। वो अच्छे से जानता था कि जब शिवांशा एक नॉर्मल साड़ी नहीं संभाल सकती, तो इतनी हैवी ड्रेस मेंटेन करना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से पार्टी में इतने सारे लोग होंगे, ऐसे में अगर शिवांशा से एक भी गलती हुई तो उसी की इंसल्ट होनी थी। मैंने कहा था कि यह बहुत हैवी है, लेकिन नव्यांशी दीदी ने बोला कि इसे ही पहनना है, शिवांशा ने नजरें झुकाकर कहा। तुम इसमें चल पाओगी? वेद ने भौहें उठाकर पूछा। कोशिश करूंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर वेद ने अपना सिर पकड़ लिया। वो सार्कास्टिकली बोला, व्हाट डू यू मीन कोशिश करूंगी? मैं तुम्हें किसी प्रैक्टिस पार्टी में नहीं ले जा रहा हूँ, ये हमारी रिसेप्शन पार्टी है और तुम ठीक से एक ड्रेस तक नहीं संभाल पा रही हो। ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर देता हूँ, उसी में बैठी रहना, जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे। शिवांशा ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने लहंगे को थोड़ा ऊपर करके चलने की कोशिश करने लगी। उसने पैरों में हैवी पायल पहनी थी जो उसके चलने के साथ बज रही थी। अगर वेद की जगह इस वक्त कोई और होता तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल रहा होता, लेकिन वेद को चिढ़ हो रही थी, खासकर उसकी पायल के शोर से। घर पर उस वक्त उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वेद ने शिवांशा को आगे चलने का इशारा किया। वो उसके पीछे धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसे ठीक से गाड़ी में बैठाने के बाद वेद उसके पास बैक सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा जो गाड़ी की डिम लाइट में चांद की तरह चमक रही थी। वेद ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। जैसे ही वे वेन्यू से थोड़ी ही दूरी पर थे, वेद ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। उसने शिवांशा से कहा, खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करना, सामने मीडिया होगी, कोई भी ऐसा जवाब मत देना जिससे मेरी रेप्यूटेशन पर दाग लगे। भले ही हमारी शादी ना हुई हो, लेकिन सबकी नज़रों में तुम मेरी वाइफ हो। मैं कोशिश करूंगी, शिवांशा ने फिर से वही जवाब दिया। वेद ने इरिटेट होकर गहरी सांस ली और तेज आवाज में कहा, कोशिश नहीं करनी है, मैं तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच में आने को नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी देर तक मीडिया इंटरैक्शन होगा, तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना ही होगा। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ ही देर में वे वेन्यू के सामने खड़े थे। अब वेद के लिए सबसे मुश्किल पल आ गया था, जब उसे सबके सामने शिवांशा का हाथ पकड़ना था। ये सचमुच उसके लिए काफी मुश्किल था। वेद ने शिवांशा की तरफ देखा और कहा, ऐसा करो, शॉल से अपना हाथ ढक लो। लेकिन उन्होंने मुझे हाथ बाहर निकाले रखने को कहा था, शिवांशा ने जवाब दिया। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वेद ने सख्त आवाज में कहा। शिवांशा को समझ नहीं आया कि वो आखिर उसे ऐसा करने को क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी उसने शॉल के एक किनारे से अपने हाथ को ढक लिया। अब वेद के लिए सबके सामने उसका हाथ पकड़ना आसान था। वेद ने शॉल के अंदर अपना हाथ डाला और शिवांशा के हाथ को पकड़ने के बजाय उसके बैंगल में लगे एक झुमके को पकड़ लिया। सबको यही लग रहा था कि वेद ने शिवांशा का हाथ पकड़ा है। अब शिवांशा को भी समझ आ गया था कि वेद ने उसे ऐसा करने को क्यों कहा था। बाहर निकलते ही वेद ने उसे स्माइल करने का इशारा किया। शिवांशा हल्का सा मुस्कुराई, जबकि वेद के चेहरे के भाव हमेशा की तरह न्यूट्रल थे। उनके गाड़ी से बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। वे साथ में उनकी फोटोज क्लिक कर रहे थे। वेद जानता था कि इस मौके पर उन्हें कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन परफेक्ट पोज देने के लिए मीडिया वाले बार बार उसे शिवांशा के करीब आने को कह रहे थे। सर प्लीज थोड़ा क्लोज आइए, आपकी ही वाइफ हैं, एक रिपोर्टर बोला। हाँ सर प्लीज, मैडम की कमर पर हाथ रखिए या उनके फोरहेड से सिर मिलाइए, हमें बस एक परफेक्ट पोज चाहिए, दूसरा रिपोर्टर बोला। उनकी बातें सुनकर शिवांशा खुद में सिमटने लगी थी। उसके गाल लाल होने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि सबके कहने पर वेद उसके क्लोज आएगा, लेकिन वेद ने प्रतीक को इशारा किया। प्रतीक उनके आगे आकर बोला, ओके फिलहाल के लिए इतना ही, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। वेद शिवांशा के साथ अंदर आ गया था। उसकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। उन्हें देखते ही उनके चेहरों पर मुस्कुराहट उभर आई। वंश ने बेज सूट पहना था जिस पर गोल्डन ब्लेजर था। उससे ट्विनिंग करते हुए आराध्या ने भी गोल्डन साड़ी पहनी थी। अक्षत बोटल ग्रीन सूट में था, तो वहीं नव्यांशी ने लैवेंडर कलर की इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। लो हमारे भाई और भाभी भी आ गए, अक्षत मुस्कुराकर बोला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। वेद और शिवांशा एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे। उनकी बाकी फैमिली उनके पास आकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट देने लगी। आराध्या ने शिवांशा की तरफ देखकर कहा, भाभी आप सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हाँ आज आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, आज सचमुच आप मेरे भैया की दुल्हन लग रही हो, नव्यांशी ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी हमारे भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बस कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे, अक्षत ने हंसकर कहा। वो बातों बातों में नव्यांशी को ताना मार रहा था। उनमें से वंश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स तो आराध्या को भी कभी नहीं देता था। उसने वेद के पास आकर कहा, भाई बस सब पार्टी में आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों को अब सबसे मिल लेना चाहिए।
फिलहाल नहीं, वेद ने जवाब दिया। उसके मना करने पर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उसने आराध्या से कहा, जब केक कटिंग की बारी आए तब तुम शिवांशा को नीचे ले आना, इतनी हैवी ड्रेस में ये ठीक से चल तक नहीं पा रही है, इस वक्त इसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाना सही नहीं होगा। मुझे भी यही सही लग रहा है, आराध्या ने वेद की बात पर सहमति जताते हुए कहा। मैंने लाइट ड्रेस सिलेक्ट करने का सोचा था, लेकिन नव्या नहीं मानी। हाँ क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरैक्शन है, मैं नहीं चाहती थी कि किसी तरह की कमी रहे। एक लाइट वेट ड्रेस में चौहान खानदान की बहू सबके सामने आएगी। अरे हम एक रॉयल फैमिली हैं, हमें इसकी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, नव्यांशी ने जवाब दिया। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। पार्टी में दूसरी चौहान फैमिली में से कोई नहीं आया था, लेकिन गायत्री देवी अपनी केयरटेकर के साथ आई हुई थी। उसने शिवांशा और वेद को साथ में देखा तो वो उन्हें गुस्से में घूर रही थी। ये लड़की अगर सचमुच देवराज ठाकुर की पोती है तो फिर वेद इस लड़की के साथ आखिर क्या कर रहा है? उसे कब से इस तरह तमाशा लगाने का शौक होने लगा? मार क्यों नहीं देता इस लड़की को? गायत्री ने गुस्से में मन ही मन कहा। गायत्री ने अपनी केयरटेकर को व्हीलचेयर उनकी तरफ लेने का इशारा किया। वो शिवांशा से बात करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वेद के कहने पर आराध्या शिवांशा को ऊपर ले जाने लगी। सेकेंड फ्लोर पर उन्होंने अपने लिए कमरे भी बुक किए थे। जो कमरा वेद और शिवांशा के लिए बुक हुआ था, आराध्या ने शिवांशा को वहां छोड़ दिया। आप चाहें तो मैं यहां आपके पास रुक सकती हूं, आराध्या ने पूछा। अरे नहीं, आप जाकर पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं ठीक हूं, शिवांशा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आराध्या पार्टी एंजॉय न कर पाए। शिवांशा के पास कुछ खाने पीने का सामान रखवाने के बाद आराध्या वहां से चली गई। वेद की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए आराध्या ने उसके लिए सबसे कॉर्नर वाला रूम बुक किया था, ताकि वहां ज्यादा लोगों का आना जाना न हो। अकेले में आने के बाद शिवांशा थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर अंकुश आया। राजावत फैमिली को भी पार्टी में इनवाइट किया गया था। अंकुश कब से शिवांशा पर नजर रख रहा था। जब उसने शिवांशा को अकेले देखा तो मौका पाकर वो उसके कमरे में घुस आया। वहीं अपने सामने अंकुश को देखकर शिवांशा घबरा गई। वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तभी अंकुश ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अंकुश तिरछा मुस्कुराते हुए शिवांशा की तरफ बढ़ रहा था, जबकि शिवांशा ने डर कर अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया था। इस वक्त वहां कोई नहीं था जो उसे अंकुश से बचा सकता था। यहां तक कि वेद भी नहीं, जो इस वक्त अपने मेहमानों के साथ बिजी था। डैश डैश डैश। क्या लगता है आगे क्या होगा?